کربلا 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 ری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا ہماری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يوم عداوة إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی آخری دو آیات شاید زندگی میں سب سے زیادہ جس سورہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے رسول نے یہ وہ واحد سورت ہے جس کو ہر نماز میں ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ تکرار کرنا واجب قرار دیا جس کو اللہ اہمیت دے اور جتنی زیادہ اہمیت دے اللہ کا اہمیت دینا بتا رہا ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں جو اس کے جملے ہیں جو اس کی آیات ہیں وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے کس قدر واجب اور ضروری توجہ فرما دیں. انشاءاللہ ہم خدا نے توفیق دی اور مہلت دی تو ان پانچ شبوں میں اس خلصہ مجالس میں کربلا صراط مستقیم کے عنوان سے ان آیات کے ذہن میں عرائض آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور قرآن کی ایسی سورت نہیں ہے جس کا نماز میں پڑھنا واجب. سورۃ الاخلاص کا پڑھنا تاکید ہے لیکن واجب نہیں. اگر کوئی نماز میں سورۃ الاخلاص نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر کوئی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں. یہ ساری تاکید اس سورۃ مبارکہ کی اہمیت بتا رہی ہے. اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان سے بندے کو سکھایا ہے کہ تو جب مجھ سے ہم کلام ہوگا تو کس طرح ہم کلام ہوگا.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ بعض اوقات بڑوں سے بات کر جب آہستہ آہستہ باتیں سیکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے بڑے کو تو کہہ کر بلائے یا کوئی اور ایسا لفظ بول دے کہ جو شایان شان نہ ہو ادب کے خلاف. تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اپنے بچے کو ایک ایک لفظ بول کر سکھاتی ہے کہ بات کیسے کرنی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہے اس نے खुद अल्फाज चुने कि जब मेरा बंदा उस हालत में खड़ा होगा जिसको मोमिन की मेराज कहा गया है। मेराज का माना आप सबको पता है, मेराज यानी उरूज, उरूज यानी खुदा का कुर्ब। नमाज की अजमत देखे जिसे मोमिन की मेराज कहा गया। क्यों? इसलिए कि बंदा खड़ा जमीन पर होता है और बात आसमान वाले के साथ कर रहा है। जमीन पे खड़ा हुआ बंदा बात आसमान वाले से कर रहा होता है। और इतनी अजीम चीज है नमाज कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे से बात वो कर सकता है जो बड़ा नेक हो, जो बड़ा बुजुर्गवार हो, जो बड़ा दर्जा रखता हो। दुनिया का गुनाहगार तरीन इंसान भी अगर हालत नमाज में खड़ा हो उसको भी ये सहूलत अल्लाह ने दी है, डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करे, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, किसी गायब की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट बंदा अल्लाह से कलाम करते और अल्लाह जब खुद सिखा रहे बंदे को डायरेक्ट उससे कलाम करना, इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके कलाम को सुनता भी है, लबैक भी कहता है। एक और आयत कुरान की ज़हन में आ गई, अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में बास लोग कमी का शिकार हैं, बास लोग अल्लाह ताला को जो मकाम देना चाहिए वो मकाम नहीं देते। बास लोगों ने बास के कानों में ये डाल दिया कि अल्लाह से डायरेक्ट बात नहीं हो सकती। तवज्जो फरमाइए, कुरान करीम की आयात सबसे बढ़कर चीज है। शब शहादत इमाम हश्तुम है, इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं नोट करके लाया था इमाम की चंद अहदीस, एक आज आपकी खिदमत में जो बात करने जा रहा हूँ उसके मुकदमे के तौर पर बयान कर रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम, ला तजावजू, इससे कभी तजावुज न करना। क्या मतलब? जो बात कुरान ने कही है उस कुरान के अलावा कहीं और बात न करना, कुरान की बात के खिलाफ कोई बात न करना। कहते हैं कि इसको इसके बाप ने मना किया ये काम ना करो, लेकिन ये बात से आगे निकल गए। मुझे फरमा रहे कि आगे ला तजावजू, इससे तजावुज न करना। अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम के ऊपर कौन बात कर सकता है? इसकी बात से तजावुज करने की कोशिश न करना। वला तत्लुबुल हुदा फी गैर फतदिल, अपनी पहली बात की वजाहत की इस दूसरे जुमले से। क्या फरमाया? वला तत्लुबु, और तलब न करना क्या अल हुदा, हिदायत को, फी गैर, गैर कुरान से। ये सिर्फ मौलाना हजरात को कहा हुआ, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे तजावुज न करना, हिदायत को इसके अलावा कहीं और से तलब न करना, सबको कहा हुआ, कुरान सबके लिए। लेकिन सबको पता नहीं, वला तत्लुबुल हुदा फी गैरे, हिदायत को गैर कुरान, कहीं और ना ढूंढना, कुरान तुम्हारे पास हो और तुम कहीं और हिदायत ढूंढने के चक्कर में हो, मैं तुम्हारा इमाम तुम्हें बता रहा हूं, ऐसा करोगे फतदिल्लू, हिदायत नहीं पाओगे गुमराह हो जाओ। मिक्सअप न करें हम चीजों को। कुरान मजीद हमें यह बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो भी पुकारे, जब भी पुकारे, नबी हो या नबी का दुश्मन हो, अल्लाह ऐसा है ही नहीं जो पुकार न सुने। फिरौन ने गर्क होते हुए जब अल्लाह को पुकारा था, अल्लाह ने उसको भी जवाब दे दिया था, अगरचे जवाब ये था कि अब वो वक्त खत्म हो चुका है जो तौबा का वक्त होता है। अब जो तू मौत सामने देख रहा है, गर्क सामने देख रहा है, अब तू कह रहा है तौबा कर, ये मुमकिन ही नहीं। लिहाजा आप कुरान मजीद में देखिए क्या फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी, अब ये अल्लाह के अपने अल्फाज हैं, ऐ रसूल जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, वइज़ा सअलका, और जब आपसे सवाल करें इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी करीबुन, फइन्नी करीबुन, तो यकीनन मैं करीब हूं। कितना करीब हूं? सूरह काफ में फरमाया, वलकद खलकनल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बेशक हमने इंसान को खल्क किया है और हमें तो वो भी इल्म होता है जब इंसान का नफ्स उसे वसवसा करता है, और हम इंसान की शह लगे जान से ज्यादा उसके करीब, इससे ज्यादा कुर्ब को बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह से बड़ा बयान करने वाला भी कोई वजूद नहीं रख सकता। वनहु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये वजाहत कर रही है आयत उस कुर्ब की कि जो मैं पहली आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ सूरह बकरा की, वइज़ा सअलका इबादी, और जब मेरे बंदे ऐ रसूल आपसे मेरे बारे में सवाल करें, फइन्नी करीबुन, तो ये जवाब से पता चल रहा है कि सवाल क्या होगा। अल्लाह को आसमानों में बैठा हुआ, अल्लाह को इतना दूर है, अल्लाह से कैसे हम कनेक्ट हो, अल्लाह से कैसे बात करें, फइन्नी करीबुन, तो यकीनन मैं करीब हूँ, उजीब हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ किसको, दावत दाए, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, उजीब हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह को जितनी मखलूकात रूए जमीन और जेर जमीन मौजूद है, और आज नहीं पहले दिन से लेकर क़यामत जितनी मखलूकात उसने खल्क की है और खल्क करेगा, सब अगर मिलकर एक ही वक्त में खुदा को पुकारे, खुदा वो ज़ात है कि जो सबको एक वक्त में सुन भी सकता है और सबको जवाब भी दे सकता है। ये अल्लाह, और कब अवेलेबल होता है, 24/7, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के सारे दिन, बल्कि कायनात के पहले दिन से लेकर कायनात के आखिरी दिन तक, जब भी कोई खुदा को पुकारे, उजीबु दावत दाई इदा दआन, कोई कैद नहीं लगाई, जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारे, मैं जवाब देता हूं, फल यस्तजीबूनी, बस जब मैं पुकारूं तो वो भी लबैक करे, जब मैं ऐसा हूं फिर मेरे बंदे भी जब मैं पुकारूं तो लबैक कहे। आइमा अहले बैत ने तिलावत कुरान, चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, तिलावत कुरान का अदब ये बताया है, आदाब बताया है अहले बैत ने, हम सारे भूल गए सिर्फ सवाल लेते रहते, आदाब बताए हैं अहले बैत ने कुरान की तिलावत के, और उन आदाब में से एक अदब ये है कि जब कुरान में इस जगह पहुंचो जहां अल्लाह फरमा रहा हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, वहां रुको और कहो लब्बैक, यानी अल्लाह की पुकार का लब्बैक कहकर जवाब दो। डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह का और बंदे का, नमाज और कुरान, नमाज और कुरान। फलयस्तजीबुली वलयुमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि रुश्द करें, ताकि तरक्की करें, ताकि राह हिदायत पर आगे बढ़ सके, मेरा कुर्ब हासिल कर सके। सवाल पढ़िए मोहम्मद। बस इमाम हश्तुम से हमने उनकी इस हदीस के जरिए तबस्सुर किया, तवज्जो फरमाए। मैंने आपकी खिदमत में जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ इन आयात को बयान करके, वो ये है कि आइम्मा अतहार से तबस्सुर बरहक है, लेकिन तबस्सुर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अल्लाह से बंदा डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। तवज्जो फरमा, कुरान की आयत वाज़ह मैंने आपके सामने बयान कर दी, तवस्सुल बरहक है, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के दीन की सबसे ज्यादा दावत देने वाले, अल्लाह के दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने वाले इन ज़वात अक्दसा को वसीला बनाना, अल्लाह की बारगाह में इनके ज़रिए तवस्सुल करना अपनी जगह पर रख, लेकिन ये मतलब हरगिज नहीं कि कोई भी बंदा वो ऐसा हो सकता है कि जो अल्लाह को पुकारने की सलाहियत खो चुका हो। अल्लाह को पुकारना, जब भी जो पुकारेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बताया है कि मैं उसको जवाब देता हूँ। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंग आती है ना उसे नींद आती है। और इस सारी कायनात को, इसकी मखलूकात को, इसके निज़ाम को, सितारों को, सैयारों को, कहकशाओं को, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हमें मालूम भी नहीं है, उन सब को संभालते हुए वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसको कुछ भी थकावट थारी नहीं होती इस सारी कायनात को संभालते हुए, वो अकेला ये काम कर लेता। अगर मिजाजों पर भारी न हो रहा हो तो एक और आयत कायनात के अल्लाह के संभालने के बारे में आपके सामने तिलावत करता हूँ। सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले। फरमाया इन्नल्लाहा युम्सिकुस्समावाति वल-अर्ध, बेशक अल्लाह ने थाम रखा है, अल्लाह थामे रखता है आसमानों और जमीन। किस बात से? अंतजूला, कि ये तबाह ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तजूला जायल ना हो जाए। जायल का लफ्ज अरबी का लफ्ज है, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मैंने दवाई खाई मेरा दर्द जायल हो गया, खत्म हो। इन्नल्लाह युम्सिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ने थाम रखा है आसमानों और जमीन को, और इसलिए ये खड़े हैं, कायम हैं, जायल नहीं होते, खत्म नहीं होते। अगर जरा सी, बहुत ज्यादा मुझे दिल नहीं है साइंस के बारे में, लेकिन एक सादी सी साइंसी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, इस कायनात का यूनिट एटम है, अल्लाह एटम भी कई हिस्सों में तकसीम होता है। जिस जमाने में हम साइंस पढ़ते थे उस जमाने में कहते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और शायद एक आधे दो कोई और बच्चे भी थे, लेकिन आप पता नहीं कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स और दरियाफ्त हो गए। तवज्जो से सुनिए, ये आयत साइंस है। अल्लाह ने थामा है कायनात को, वरना जायल हो जाए। अब जरा साइंसी निगाह से देखिए, कायनात का यूनिट एटम है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल से चीज़ें बनती हैं। मैं, आप, ये मेंबर, ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है, सितारे, सैारे, सारे के सारे, हवा, ये क्या है? एटम्स हैं। एटम की तस्वीर आपने देखी होगी किताबों में, उसके अंदर एक सेंटर होता है, न्यूक्लियस कहते हैं उसको, और उस न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दरमियान में होते हैं, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं कुछ ज़र्रात जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये साइंसदानों को पता है, लेकिन इस एटम के स्ट्रक्चर को किसने ऐसा बनाया है और फिर बना के थाम रखा है, बनाकर थाम रखा है? कुछ फोर्सेस हैं जो इसके अंदर एक्ट कर रही होती हैं, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रहता है। ये साइंसदानों ने बनाया नहीं है, देखा है, तवज्जो कर रहे हैं। और अगर आप जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, हर एक एटम में अल्लाह ने कितने कितने दाने रखे हैं प्रोटॉन के, और कितने न्यूट्रॉन्स के, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे तो अभी याद भी नहीं, भूल गए। तवज्जो फरमाए, कुछ के याद थे, जो याद थे वो भी भूले हुए, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल अगर इसको मारिफत की निगाह से देखा जाए, तो ये जिनको अब एक तरतीब के साथ साइंसदानों ने अरेंज किया, जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास बढ़ता रहता है, तो ये पीरियोडिक टेबल को भी अगर मारिफत की निगाह से देखा जाए, तो ये भी आपको बनाने वाले की तस्बीह करता हुआ दिखाई देगा, सुनाई देगा। बकौल इकबाल के, हर तस्बीह इस कान से नहीं सुनी जाती। इकबाल फरमाते हैं कि खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। अगर तुझे अल्लाह ऐसा दिल दे दे कि जो इस अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से कलाम कर सकता है, तो फिर तुझे फूलों की बातें भी सुनाई देंगी, लाल और गुल की बातें भी तुझे सुनाई देंगी। और वो बात क्या होगी? वो जो कुरान कहता है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सब अल्लाह की तस्बीह करता है। हाँ, तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये जो अल्लाह कह रहा है मैंने कायनात को थामा हुआ, आप तसव्वुर कीजिए, हम सब एटम्स से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स जो एटम्स के मिलने से बनते हैं, उससे हम बने हुए हैं। अगर एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें कि वो ताकत जो एटम को थाम के रखती है, एटम अपनी शक्ल में रहता है, वो ताकत एक्ट करना खत्म हो जाए, सीज हो जाए, क्या हो? कोई रहेगा ही नहीं जो देखे क्या हुआ। हम अपनी आरजुओं समेत, अपनी जमा करदा जायदादों समेत गायब हो जाएंगे। ये अल्लाह बता रहा है शायद, तुम्हारा वजूद भी हर पल मेरे थामने का मोहताज है, मेरी तवज्जो का मोहताज है। इन्नल्लाहा युमसिक, कैसा खालिक है, खल्क भी किया है और थामा भी हुआ है। ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन आपको अर्ज करूँ कि ये जो लोग वो बिग बैंग पर जो तहकीकात करते हैं, उन्होंने ये भी लिखा, उन साइंसदानों ने, कि कायनात का बिग बैंग के ज़रिए, धमाके के ज़रिए वजूद में आना भी नाकाबिले फहम है। धमाका तो बदनज़मी पैदा करता है, ये कैसा धमाका था जिसने इतनी मुनज्जम कायनात को वजूद बख्श दिया, इतनी मुनज्जम कायनात को वजूद बख्श दिया, ये कैसा धमाका था? और फिर ये भी लिखा कि ये कायनात जिस तरह वजूद में आई थी, इसको उसी तरह खत्म हो जाना चाहिए था, ये कायम क्यों है, ये मुनज़्ज़म हरकत में क्यों है। वो जो फरमा रहे इन्नल्लाह युमसिकुस समावात वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ने थाम रखा है आसमानों और जमीन को और वो ज़ायल नहीं होते। वला इन ज़ालता, अगर वो छोड़े और ये तबाह होने लगे, ये खत्म होने लगे, इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बाद, तो अल्लाह के बाद कोई वाहिद जात, कोई एक भी जात ऐसी नहीं है कि जो इस कायनात को तबाही से बचा सके, जायल होने से रोक सके। ये कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बाद, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं थाम सकता, कोई एक भी अल्लाह के बाद अगर खुदा छोड़ दे, खुदा इसको थाम कर न रखे। वकान अल्लाह गफूरन हदीमा, बहुत खूबसूरत इशारा किया, अल्लाह बड़ा मगफरत करने वाला और बर्दाश्त करने वाला है। क्या मतलब, यानी उसने तुम्हें बनाया है, वो तुम्हें पालता है, उसने तुम्हारे लिए ये सारी महफिल सजाई है। अलम नजअल अर्द मिहादन, क्या हमने ज़मीन को बच्चे के बिस्तर की तरह तुम्हारे लिए आरामदेह नहीं बनाया। तो उस खालिक की कितनी नाफरमानी करते हो तुम, जो तुम कर रहे हो, कब का वो इस कायनात को तबाह कर दे। लेकिन मकान अल्लाह गफूरन हलीमा, वो बड़ा गफूर भी है और बड़ा बर्दाश्त करने वाला भी है। एक सलवात पढ़िए तुम मंगवा लो, ये अल्लाह अपने जिम्मे लिया है, उसने अपनी हर मखलूक की हर जरूरत को पूरा करना, और वो जात जो हर मखलूक की हर जरूरत पूरी करता है, सरचश्मा है, उसको कुरान की जबान में रब्बुल आलमीन कहते हैं। रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हम्द अल्लाह की है, तमाम तारीफ अल्लाह की है। कोई पूछे क्यों, इसलिए कि तुम्हें सब कुछ दिया ही उसने, जो भी पल रहा है वो पाल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें तो कोई 10 दिन रख के, तुम जरूरत में हो, 10 दिन तुम्हारा ख्याल रखे, तुम उसकी तारीफें करने लगोगे। तो जो शुरू से आखिर तक तुम्हारा पालने वाला है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। इस अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में अहले बैत अतहार की फरमीन के मुताबिक पूरे कुरान के मतालिब को समेट दिया है। इसमें तौहीद भी है, इसमें तौहीद भी है, इसमें अदल भी है, इसमें रिसालत भी है, इसी में इमामत भी है, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इसी में कयामत भी है, और बाकी सारा का सारा कुरान इस इजमाल की तफसील, सूरतुल फातिहा के इजमाल की पूरा का पूरा कुरान तफसील है। इतनी अहम सूरा में, सूरतुल फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को दुआ मांगना सिखाई है, दुआ मांगना सिखाई है। अगर आपसे पूछूं कि इस दुआ में, इस सूरतुल फातिहा में अल्लाह ने कितनी चीजों का हमें सिखाया है कि मांगो, सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज मांगना सिखाया है, और वो चीज इतनी अहम है कि बार बार कहा है वो ही मांगो। और जितना भी तुम्हें वो ज्यादा मिल जाए फिर भी वही मांगो। अदना तरीन मुसलमान भी वही मांगे और सरवर कायनात भी वही मांगे।
तो मुझे बताए और वो क्या चीज है? एक दिना हमारी हिदायत कर, हमारी हिदायत कर, हमारी रहनुमाई कर, किसकी तरफ? अस्सिरात अल-मुस्तकीम, अल्लाह की बारगाह में उसकी मखलूक एक सफ में खड़ी है, रसूलुल्लाह भी और एक अदना मुस्लिम भी, सब सवाली अल्लाह की बारगाह में। इहदिना हमारी हिदायत कर, हमारी रहनुमाई कर। याद रखिए अल्लाह का इल्म उसे कोई नहीं पहुंच सकता, अल्लाह के इल्म की बराबरी कोई नबी कोई वली कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया वकुल रब ज़िदनी इल्मन, ऐ परवरदिगार ऐ रसूल कहिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इजाफा तभी होता है जब कुछ कमी हो, कमी किसके मुकाबले में? बाकियों के मुकाबले में नहीं है, बाकियों का इल्म इनके इल्म का मुकाबला ही नहीं करता जिन्हें अल्लाह ने अपना खास इल्म अता फरमाया। लेकिन जब अल्लाह की तरफ देखा जाए तो क्या कहेगा नबी भी? रब ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। नबी भी जब अपने सारी खिदमात अंजाम दे चुका है, सब दर्जात अपने पा चुका है, तब भी यही बोलेगा इहदिना हमारी हिदायत फरमा। क्या मतलब है इस हिदायत? हिदायत के दर्जात होते हैं। बाद लोगों के जहन में सवाल आता है कि ये जो नमाज के लिए खड़ा है ये कोई गुमराह है जो कह रहा है हिदायत कर? हिदायत ही तो मिली है जो नमाज पढ़ रहा है। इसका जवाब ये है कि कुछ मिली है बहुत कुछ बाकी है, कुछ मिली है बहुत कुछ बाकी है। तो एदना का तर्जुमा हम क्या करेंगे? खुदा जितना रास्ता दिखा दिया है उस पर कायम रख और जितना अभी नहीं दिखाया वो भी हमें दिखा। जो अभी नहीं था हमारे इल्म में नहीं है, बातें हमारी मालूमात नहीं है इस दीन के बारे में इसकी तालीमात के बारे में वो भी बढ़ा। ये इहदिना इज इक्वल टू रब ज़िदनी इल्मा, इहदिना इज इक्वल टू रब ज़िदनी इल्मा, एक फर्क के साथ कि इहदिना अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू क्या कह मेरी हिदायत फरमा। क्या कहेंगे? हमारी हिदायत फरमा। इसमें पैगाम है कि दीन इस्लाम वो दीन नहीं है जो सिर्फ हर इंसान से कहे अपनी फिक्र कर। दीन इस्लाम वो दीन है जो कहता है अपनी अपने साथ साथ दूसरों की भी फिक्र कर। करबला अपनी फिक्र से ज्यादा दूसरों की फिक्र। ये जो हुसैन हिदायत का चिराग है इस चिराग की रोशनी में इंसान सिरात-ए-मुस्तकीम को देखेंगे। जब इस्लाम के तरह तरह के चेहरे मुनहरिफ बिगाड़ कर दुनिया में आम कर दिए जाएंगे तो हुसैन नाम का चिराग सिरात-ए-मुस्तकीम दिखाएगा। हुसैन एक ऐसी कुर्बानी देगा कि जिसको दोस्त दुश्मन जानने वाला न जानने वाला हर वो शख्स कि जिसके दिल में इंसानियत की कोई रमत मौजूद है वो जब हुसैन का किस्सा सुनेगा एक दफा ठिठक कर रुक जाएगा कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो कोई और है और जिसने ये कुर्बानी दी उसका रास्ता कोई और है।
आवाज़ें बुलंद नारायण अल्लाह।
ملکوں میں مختلف ممالک میں آپ خبریں سنتے ہیں فلان ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، اگر مظاہروں میں کوئی بندہ مارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کا قتل اس کے سبب انسانوں کے جذبات اور بھڑک جاتے ہیں، انسانوں کے دل اس مرنے والے کے لیے اور زیادہ اس کے ان کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس ظلم کے خلاف جس کے خلاف احتجاج میں وہ مقتول قتل ہوتا ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو پہلے گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی گھروں سے نکل آتے ہیں. دیکھتے ہیں آج کی دنیا، اس مرنے والے کا خون جن کے جذبات ٹھنڈے تھے ان کے جذبات کو بھی بھڑکا دیتا ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کربلا کیا ہے. کائنات کا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا ہے کربلا میں، جس کے اندر ذرا برابر بھی انسانیت ہے اس کے جذبات بھڑکیں گے، وہ سوچنے کی طرف متوجہ ہوگا یہ کون ہے کربلا میں، حسین کون ہے اور حسین کے مخالف کون ہے. پھر اس کو نظر آئے گا حسین بھی اسلام کا دعوے دار ہے، وہ جو مخالف ہے وہ بھی اسلام کے دعوے دار ہے. اب وہ پڑھنا شروع کرے گا، سننے کی کوشش کرے گا، جاننے کی کوشش کرے گا. اس کوشش کے نتیجے میں اللہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. صرف حسین کی روشنی دل میں جلاؤ، جہاں اندھیرا ہے وہاں ذکر حسین کو لاؤ، حسین خود بخود صراط مستقیم کی ہدایت کر دے گا. ایک سوال پڑھیے محمد والے کو. بس سیکنڈ لاسٹ آیت سورۃ الفاتحہ کی کیا کہہ رہی ہے؟ اہدنا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، اے پروردگار، ہم ہر چیز میں تیرے محتاج ہیں، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، محتاج بھی تیرے سامنے. یہ ادب سکھا کر اللہ نے، یہ اقرار کروا کر اللہ نے کہ سجدہ بھی تجھے کرتے ہیں، عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں، اور محتاج بھی صرف تیرے ہیں. ایاک نستعین. اب یہ اظہار کر کے سکھانے والا اللہ ہوتا ہے، اکڑ کے نہیں مانگنا، پہلے اپنی حیثیت کو اپنے الفاظ سے بتانا ہے تاکہ تمہیں اپنی محتاجی کا میرے سامنے احساس ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے میں کون ہوں اور تم کون ہو. صرف تجھی سے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیے، ساری کائنات کی چیزوں میں سے اللہ کو جو چیز اپنے بندے کے لیے اللہ کے علم کے مطابق، ساری کائنات کی چیزوں میں سے جو چیز بندے کے لیے اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ ضروری تھی، وہ ایک چیز مانگنے کا حکم دیا، اور اس چیز کا نام ہے ہدایت. ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اور کچھ نہیں سوال کروایا، کہا سب کچھ مانگو لیکن یہاں ایک چیز مانگو تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ کتنی اہم ہدایت، کتنی اہم. کس کی ہدایت؟ الصراط المستقیم. صراط کا اپنا معنی بھی سیدھا راستہ ہے، المستقیم اس کی تاکید، یعنی हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर जो बिल्कुल सीधा है। क्या मतलब? जिसमें कोई कजी, कोई टेढ़ापन नहीं है, जो हमें सीधा वहां पहुंचा दे जहां तू पहुंचाना चाहता।
तवज्जो फरमा। लेकिन यहां पर बात अल्लाह ने खत्म नहीं की। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर बात अल्लाह ने खत्म नहीं की। यह बताया अगली आयत में, अगली आयत के पहले हिस्से में। हम सारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन अय्याम में। अगली जो आखिरी आयत है सूरतुल फातिहा की, उसको अगर सादा लफ्जों में आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो खुदा ने यह बताया है कि सिर्फ रास्ता दिखा देना तुम्हारे लिए काफी नहीं है, कुछ ऐसे रहनुमा भी तुम्हारे लिए जरूरी है जो इस रास्ते को उस तरह चले हैं जिस तरह चलने का हक।
उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जो सुरखरू हुए, जो सरफराज हुए, जो सरबलंद हुए अगरचे सर कटा कर, सरबलंद हुए। सिरात अल्लदीन अनअमत अलैहिम, यही से जरा ये भी सोचिए कि नेमतें सिर्फ वो नहीं है जिन्हें हम दुनियादार निगाहों से नेमतें समझते हैं। खुदा सारी दुनिया दे दे ये भी नेमत है, और खुदा सारी दुनिया खुदा के रास्ते में कुर्बान करने की तौफीक दे दे ये पहली से बड़ी नेमत। ये मुझे और आपको शायद न पता हो, लेकिन शरीकतुल हुसैन को पता था। वो जो अहमद तख्त पर बैठा था उसकी आंखें जाहिर देख रही थी, और वो जो अली की बेटी थी उसकी आंखें सब कुछ देख रही थी। लिहाजा उसने ताना दिया कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे रुस्वा किया है। लेकिन बीबी ने क्या किया? उसका मुंह बंद करवाया, फरमाया मा रअईतु इल्ला जमीला। इसका क्या तर्जुमा? कि तू कह रहा है हम रुस्वा हुए, तू कह रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है, तू कह रहा है कि तुम्हें फतह हुई है, इल्ला जमीला, मैंने सिवाय अपने ऊपर अल्लाह के बेकरा एहसान के और कुछ नहीं देखा। ये कौन सी आंख है? ये कौन सी आंख है? ये वो आंख है जो चीजों का जाहिर नहीं देखती, चीजों की हकीकत को देखती, चीजों की हकीकत को देखती। उनका रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया। हम वापस आएंगे इन मतालिब की तरफ दोबारा, आयत को तमाम कर। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाललीन, दो ग्रोह बनाए, अच्छों का एक ग्रोह, बुरों के दो गुरु। एक का नाम रखा अल मग़दूब अलैहिम, एक का नाम रखा अद्दाललीन, जो ना उनमें से थे। अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम कौन है? गैर अल मग़दूब अलैहिम, जो ना उनमें से थे जिन पर ग़ज़ब हुआ, वलद्दाललीन, और न उनमें से जो घटक है। ये दोनों भटके हुए, ये दोनों से रहते उस तकलीफ पर नहीं है, लेकिन इनमें भी फर्क मौजूद है, एक दूसरे से कुछ क्वालिटीज में ये दोनों जुदा। इंशाल्लाह इन बाकी मानदा अयाम में इन्हीं आयात के गिर्द आपकी खिदमत में अराइज पेश करूंगा। एक मरतबा फिर सलाम पड़े मोहम्मद वाले। लफ्ज हिदायत का माना आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहिए। आयात कुरान ही के जरिए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहिए। ये जो कुरान है ना, इसकी आयात में अल्लाह ने हमें तदब्बुर का हुक्म दिया कई जगह। हम करते नहीं, हम चैंपियन हैं अपनी गफलत के लिए। हम शॉर्टकट्स चाहते हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। सिरात मुस्तकीम शॉर्टकट होता है, पता है? सिरात मुस्तकीम यानी ये जहां मैं बैठा हूं और जहां मसलन मेरे वो भाई बैठे, सीधी लाइन खींची जाए। कोई बंदा आकर कहे वहां तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट बताओ, मैं कहूंगी सीधी लाइन लिखते हैं, शॉर्टकट बताओ। मैं कहूंगा जब मरीज कैंट से होकर दोबारा उनके पास आ, अल्लाह का बताया हुआ रास्ता शॉर्टकट। इसके अलावा तमाम रास्ते जेब कट। तवज्जो फरमा, जेब कट समझते, जेब कटती है। सिरात मुस्तकीम सबसे सीधा रास्ता है, सबसे कम फासले वाला, जो अल्लाह के कुर्ब की मंजिल पर बंदे को पहुंचा देता है। ये जो हिदायत बंदे ने अल्लाह से मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में फरमाया ये ले कुरान। क्या तारुफ करवाया कुरान का? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, तुझे ऐसी किताब दे रहा हूं जिसमें तू जो पढ़ेगा यकीनी होगा। और किसी किताब को यह दर्जा हासिल नहीं है। एक किताब जिसके बारे में कहा जा सकता है कल किताब ला रैब फी, ये जितनी जितनी अहम किताब है उतने ही मुसलमान इसके बारे में गफलत का शिकार है। मैं सब मुसलमानों की बात कर रहा हूं। इजमाए उम्मत है, इत्तेहाद उम्मत है इस बात पर कि हर जगह से तीन लोग कुरान से मतलब इजमा किया हो। दानिकल किताब ला रैब फी, अपनी किताब का अल्लाह तारुफ करवा रहा है। ये हिदायत तुमने हिदायत मांगी थी, ये हिदायत लिल्मुत्तकीन, हर किसी को इसकी हिदायत फायदा नहीं देगी, उसको फायदा देगी जो फायदा लेना चाहे। ये तकवा का पहला दर्जा। अगर मैं कुरान पढूं, कुरान पे पीएचडी का मकाला लिखूं, कुरान को पता नहीं सोने से लिखवा दूं, कुरान को पता नहीं क्या क्या कर दूं, लेकिन हिदायत तलब ना करूं, इन कामों का मुझे कोई फायदा नहीं होगा। कुरान का फायदा उसको होगा जो ना सोना लगाए ना चांदी लगाए, सिर्फ खोल के इस नियत से पढ़े कि ऐ अल्लाह इस किताब से मेरी रहनुमाई कर। ये तारुफ है कुरान दालिकल किताब ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन। आज बयान नहीं कर पाऊंगा इस फर्क को। एक जगह पर फरमाया हुदल्लिन नास, सब लोगों के लिए हिदायत। एक जगह फरमाया यहां पर सूरह बकरा में हुदल्लिल मुत्तकीन, क्या फर्क है? कल बयान करूंगा। अगर कोई जवान ऐसा है जो खुद से फर्क ढूंढ के ले आए मजलिस से पहले मुझे बता दे, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्र अदा करूँ। कुरान मजीद के बारे में कुछ हम क्यूरियस हो जाए कि ये है क्या, समझ में आता है या समझ में नहीं आता। उदल लिलनास और उदल लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, सब लोगों के लिए हिदायत है। इन दो बातों में क्या फर्क है, क्योंकि करने वाला अल्लाह है, लिहाजा ये नहीं कह रहे तो इख्तलाफ हो गया, क्योंकि करने वाला अल्लाह है और अल्लाह हकीम है। उसकी बात कभी कभी थोड़ा सा गौर करने के बाद समझ में आती है। तो एक जगह फरमाया रसूल को इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक ए रसूल आप सिरातिम मुस्तकीम की हिदायत करते हैं। और इसी कुरान में एक जगह फरमाया इन्नका लतहदी मन अहबबता, ए रसूल यकीन कर ले कि तू जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकता, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन ये अल्लाह है जिसे चाहता है हिदायत करता। इसका क्या मतलब, एक आयत में कह रहे हैं ए रसूल तू सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता है, दूसरी आयत में कह रहे हैं तू जिसे चाहे नहीं कर सकता, वहाँ भी लफ्ज हिदायत है, यहाँ पे है लतहदी तू हिदायत करता है यकीनन, वहाँ पे कह रहे हैं ला तहदी तू हिदायत नहीं करता। ये क्या बात है, ये बड़ी प्यारी बात है। जब समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाए तो इतनी प्यारी बात है कि इससे प्यारी बात कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह से ज़्यादा बड़ी और अच्छी और खूबसूरत बात कोई नहीं कर सकता। हमारे आइम्मा का फरमान है, सुनिएगा कुरान के फ़ज़ाइल में एक बयान ये है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ज़रा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, फरमाते हैं अल्लाह के कलाम को बाकी तमाम कलामों पर, अल्लाह के कलाम को बाकी तमाम कलामों पर वही फजीलत हासिल है जो अल्लाह को तमाम मखलूकात पर हासिल है। मवाज़ा देखिए, जो फजीलत अल्लाह को तमाम मखलूकात पर हासिल है वही फजीलत अल्लाह के कलाम को बाकी तमाम कलामों पर हासिल है। लेकिन हम कौन सी कौम है, हमारे सामने जब शेर पढ़ा जाए तो हमारी तवज्जो ज्यादा होती है, जब कुरान की तिलावत हो तो हमारी तवज्जो उतनी नहीं। मैं आपसे माजरत के साथ ऐसी बातें करता हूँ जो हकीकत है, जो हकीकत है। कुरान की तिलावत होती है मजमा जमा करने के लिए, ना कि कुरान क्या कहे। अल्लाह जब बोल रहा है कोई सुनने वाला नहीं, वो तो गप्पे लगा रहा है, बाहर सिगरेट पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है, सबको पता है अनइम्पोर्टेंट काम हो रहा है, अनइम्पोर्टेंट काम हो रहा है, समझते हैं सवाब मिलेगा इसका। और जब मेरे जैसे किसी ने आकर बोलना हो समझते अब इम्पोर्टेंट काम शुरू हो। कुरान इसलिए नहीं आया था कि तिलावत चलाकर मजमा जमा किया जाए। अल्लाह के खालिक ने फरमाया है वइदा कुरिअ अल-कुरान, जब कुरान की तिलावत की जाए फस्तमिऊ लहू, तो कान लगाकर गौर से उसको सुना करो, व अनसितु और उसको सुनने के लिए खुद चुप कर जाया करो, लअल्लकुम तुरहमून, तब उम्मीद रखो कि खुदा तुम पे रहम करे। जो कुरान लगा के बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं, गप्पे लग रहे हैं, तबसरे सियासी डिस्कशन हो रही है, समझते हैं लअल्लकुम तुरहमून हमारे लिए नहीं है। अल्लाह की बातें नहीं बदल सकती। हजार चिकनी चुपड़ी खिताबतों से, शायरियों से अल्लाह के कुरान की एक आयत भी, एक हर्फ भी नहीं बदल सकता। इसीलिए हमारे आइम्मा ने हमसे फरमाया हमारे नाम पर भी तुम्हें कोई आकर बात करे पहले कुरान से चेक करना कुरान की बात के मुखालिफ तो नहीं। ये कुरान मामूली है, ये मजमे जमा करने के लिए, 12 और 14 में ये फरमाया, हमारे नाम पर उस तरह धोखा न खाना जिस तरह ईसा के नाम पर ईसा के चाहने वाले धोखा खाए। तुम्हें अल्लाह ने कुरान दिया, ये हदीस सकलैन का मतलब कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत। का नाम लिया फिर अहले बैत के। मैं इससे इस तरह समझता हूं कि मेरे अहले बैत तक पहुंचोगे, लेकिन सही तब पहुंचोगे जब अहले बैत बरास्ता कुरान, कुरान को बाईपास करके कहीं और पहुंचोगे, मेरे अहले बैत तक नहीं पहुंचोगे। हदीस सकलैन यानी अहले बैत बरास्ता कुरान वाया कुरान। मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, ये दोनों जुदा नहीं होंगे आपस में, इन दोनों से तमस्सुक करना। वक्त ज्यादा हो गया अराइज को, यहां पर आज मैं तमाम करता हूं। किसी दर्द दिल रखने वाले ने यह कहा कि अल्लाह का रसूल अपनी उम्मत को दो कीमती चीजें देकर गया, दो गिरा कदर चीजें, दो भारी चीजें। ये भारी सकलैन यानी दो भारी चीजें, भारी होने का मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह के बाद उम्मत में इन दो से ज्यादा किसी और की बात का वजन नहीं लिया जाएगा, कुरान और अहले बैत से ज्यादा। और इसलिए फरमाया कि दोनों से तमस्सुक करोगे तो गुमराह नहीं, जब तक ये रखोगे गुमराह नहीं। लेकिन मैंने अर्ज किया कि किसी दर्द दिल रखने वाले ने ये बात कही, अल्लाह का रसूल दो चीजें देकर गया था, उम्मत ने दोनों के साथ बदसलूकी की, दोनों की बेकदरी, जो कुरान के साथ रवैया होना चाहिए, जो जिंदगियों में कुरान का मकाम होना चाहिए था वो कुरान को ना दिया, और जो मकाम अल्लाह के नबी ने अहले बैत का बताया था, जो ताकीद अपने अहले बैत के बारे में की थी, वो एहतराम वो मकाम उनको ना दिया। आपने सुना होगा, उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया था मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, अगर अल्लाह के नबी ने ये फरमाया होता कि मेरे बाद मेरे इन प्यारों पर जुल्म करना तो भी शायद उम्मत इससे ज्यादा जुल्म न कर सकती जितने जुल्म किए हैं। हुसैन को मजबूर कर दिया, दीन पर इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी कि हुसैन मजबूर हो गए नाना का मदीना छोड़ने के लिए। सबको दावत दे रहे हैं मेरे साथ आओ, जो मेरे साथ आएगा वो शहादत की उम्मीद रखे, जो मेरे साथ नहीं आएगा वो कभी कामयाबी को फलाह को नहीं पाएगा। हाँ आजादारो हुसैन करबला पहुंच गए साथ अपनी बहन जैनब को लेकर। बीबी जैनब को कहा जाता है, बड़ा खूबसूरत नाम है आपके इस मकान मुकद्दस का, शरीकतुल हुसैन, यानी वो हुसैन की बहन जो हुसैन के गमों की भी शरीक थी, हुसैन के मकासिद में, हुसैन के आमाल में, हर चीज में हुसैन की शरीक थी। लेकिन ऐसी बहन थी कि जो एक मामले में हुसैन से आगे निकल गई, कि जब करबला में हुसैन की जिम्मेदारी खत्म हो गई लेकिन शरीकतुल हुसैन की जिम्मेदारी खत्म ना हुई। बस एक जुमला सुनिए, मुख्तसर करता हूँ, ये शरीकतुल हुसैन असर आशूर एक दफा एक मंजर देखती है कि उसके पर्दे का मुहाफिज अब्बास हाथ में एक मशकीजा है और घोड़े पर सवार होने के लिए सर झुकाकर चला जा रहा है। बीबी जैनब ने यह मंजर देखा, हजरत अब्बास की तरफ चलने लगे। अब्बास ने एक दफा क्या देखा, वो बीबी कि जो है तो बहन, लेकिन अब्बास ने बहन नहीं आपाजादी कहकर हमेशा बुलाया, वो उसके सामने खड़ी है। अब्बास ने अदब के साथ सर को झुकाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास जाने की तैयारी कर चुके हो? मैं तुम्हें रोकूं भी नहीं, बस एक मरतबा थोड़ी देर के लिए मेरे सामने बैठ जाओ। अब्बास को जानू होकर अदब से करबला की रेत पर बैठ गए। बीबी ज़ैनब ने कलाम शुरू किया, कहने लगी, अब्बास मेरा बचपना था, अपने बाबा की गोद में एक दिन बैठी थी, मेरे बाबा मुझसे प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, अचानक तेज हवा चली और मेरे सर से चादर हट गई। अब्बास, मेरे बाबा अली ने जब ये मंजर देखा तो ज़ारो कतार रोने लगे और रोते रोते कभी मेरे सर को चूमते थे और कभी मेरे हाथों का बोसा लेते थे। अब्बास के मंजर देखकर मैं घबरा गई। मैंने अपने बाबा से माफी मांगी। मैंने कहा, बाबा मेरी गलती नहीं, हवा की वजह से चादर मेरे सर से हटी। मेरी बात सुनकर मेरे बाबा अली ने मुझसे फरमाया, ज़ैनब तेरी कोई गलती नहीं, तेरी कोई खता नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन तेरे सर से चादर हटी देखकर मुझे वो वक्त याद आया है जिसके बारे में मुझे बताया गया है। एक वक्त आएगा बेटी ज़ैनब जब तेरे सर पर चादर नहीं होगी और तेरे इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी। अब्बास, जब मैं बड़ी हो गई, अब्दुल्ला से मेरी शादी हो गई, तो कभी कभी अब्दुल्ला के घर से जब अपने बाबा अली के घर को देखा करती थी और मुझे जब कभी ये बात अपने बाबा की याद आती थी तो अब्बास मुझे हैरत होती थी। कब हैरत होती थी? जब मैं ये देखती थी कि मेरे 18 कड़ियल जवान भाई हैं और उन सब से बढ़कर अब्बास, जब मैं तुझे देखती थी कि जिसका अब्बास जैसा गयूर, जिसका अब्बास जैसा गैरतमंद भाई हो, भला उस बहन पर कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि कोई ये जुरत करे कि उसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाए, कोई ये जुरत करे कि उसके हाथों में रस्सियां पहनाए। हाँ अब्बास, आज तुझे मैदान में जाता देखकर मुझे यकीन हो गया कि आज ही के दिन के बारे में मेरे बाबा ने मुझे बताया था। सच कहा बीबी ज़ैनब ने, अज़ादारो अब्बास की माँ, चार बेटे हैं जिनमें से अब्बास सबसे बड़े हैं, चारों के चारों करबला में हुसैन पर कुर्बान हुए। और ये बीबी उम्मुल बनीन कैसी माँ है कि जब खबर पहुंची मदीना में कि करबला में शहादतें हुई हैं, किसी ने बीबी को बताया, बीबी तेरे बेटे शहीद हो गए, बीबी कहती है, मेरे बेटे हुसैन पर मारे, हुसैन के बारे में बताओ, मेरे हुसैन के बारे में मुझे बताओ, अब जो बताया गया हुसैन भी शहीद हो गए। तो आज़ादारो बीबी उम्मुल बनीन ऐसे बैन किया करती थी के दोस्त दुश्मन भी रुक के सुनते थे और गिरिया करते थे। मकातिल में लिखा है कि मरवान जैसा सख्त दिल भी अगर जन्नतुल बकी के पास से गुजर रहा होता था, जब बीबी उम्मुल बनीन के बैन को सुनता था तो ये भी मुंह छुपा कर रोना शुरू करता था। क्या बैन करती थी बीबी उम्मुल बनीन? कुछ अशआर हैं जिनका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करके ज़हमत तमाम करता हूँ। बीबी उम्मुल बनीन कहा करती थी, ऐ मदीना की औरतों, अब मुझे उम्मुल बनीन न कहना। उम्मुल बनीन का माना आपको पता है, बेटों की माँ। ऐ मदीना की औरतों, अब मुझे उम्मुल बनीन न कहना, मेरे सारे शेर करबला में कुर्बान हो गए। और ऐ वो आंख जिसने देखा है कैसे मेरे अब्बास ने और मेरे शेर बेटों ने हमले किए थे करबला में, जरा मुझे बताओ तो सही, मेरा अब्बास कैसे झपटता था हाँ हाँ मुझे खबर मिली है कि मेरे अब्बास के दोनों हाथ कट गए थे और उसके बाद किसी जालिम ने लोहे का गुर्ज मेरे अब्बास के सर पर मारा था। आहा ऐसा ही हुआ होगा, वरना कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बास के बाजू भी सलामत हो और कोई उस शुजा के करीब आने पाए। अला रहमतुल्लाह अलल कौम अज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीन ज़लमू अय्युल क़दरि यन्क़लिबून। परवरदिगार के कुरान करीम हक मुहम्मद आल मुहम्मद हक शहदाए करबला हक के बिलखुसूस हक के अबुल फज़ल अल अब्बास हमारी इस करीम सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करे। परवरदिगार अहले बैत अत्हार के सच्चे मुहिब सच्चे खिदमत गुजार बनने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे दीनी शऊर दीनी बसीरत दीन की समझ में इजाफा फरमाए। परवरदिगार जिसे तू सिरात मुस्तकीम कहता है उसकी शनाख्त मारिफत उस पर साबित कदम रहने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। इस दुनिया में और आखिरत में कुरान करीम और अहले बैत से तमस्सुक और उनका साया हम सबको नसीब फरमाए। तमाम दुनिया में इमाम हुसैन के आज़ादारों की जान माल और नफ्स की हिफाजत फरमाए। इस आज़ादारी की अमानत की हिफाजत की हमें तौफीक अता फरमाए। आज़ादारी के मुखालिफीन गैरों के रूप में हो या अपनों का लिबादा ओढ़े हुए हो उनको पहचानने वाली आंख हम सबको अता फरमाए। परवरदिगार शऊर और बसीरत के साथ मतलब अहले बैत के खिलाफ होने वाली चालों का मुकाबला करने की और उसके लिए मैदान में रहने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पर कायम हो कायम रखे, हमारे मराजे को तूल उम्र और बरकत अता फरमा, हमारे जमाने के इमाम के ज़हूर में ताजीब फरमा और उनकी गैबत के ज़माने में हमें उनके हकीकी मुंतज़िर बनने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सब का खात्मा ईमान पर यानी मोहब्बत मुहम्मद व आल मुहम्मद पर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।